Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और वहां अर्जुन देख रहा था. ब्रह्म सूत्र में कहा है कि जिस परमात्मा से सारी दुनिया बनती है, जिसके कारण रहती हैं और अंत में उसी में लीन हो जाती हैं, वो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है. और वहां अर्जुन सुन नहीं रहा था, अर्जुन देख रहा था, वो दृश्य देख रहा था. संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से कैसे बन रही है ये भी देख रहा था. भगवान में सृष्टि कैसे रहती है टिकी हुई ये भी देख रहा था. और अंत में सारी सृष्टि परमात्मा में विलीन हो रही ये भी देख रहा था. और वो क्षण क्षण ये आज ये विनाश जो वर्तमान का है ये भी देख रहा था. परमात्मा में विलीन हो रहा है, यहां कोई मर नहीं रहा है, ये परमात्मा में मर रहे लोग. अरे वो तो बहुत, भगवान ने जो बहुत लंबा दृश्य था ना वो एक क्षण में दिखा दिया था. अर्जुन ऐसा अनुभव कर रहा था कि विराट वो परमात्मा, काल रूप परमात्मा सबको खा रहे हैं. ऐसा वो तो बहुत विभत्स वर्णन है. वहां तो ऐसा वर्णन है कि जैसे आप आजकल तो मैगी वैगी तो नहीं खाते हैं ना, ग्रीष्म है, खत्म हो गया. आप मान लो कि सेवई खाते कि नहीं, सेवई खाते खाते हैं तो आदमी दांतों में अटकी रहती है, तो खाते समय कैसे दिखते हैं आप, भयंकर दांतों में मैगी लगी हुई है, सेवई लगी हुई है, कुछ गिर भी रही है आदि. अर्जुन देख रहा था भगवान बहुत सारे लोगों को ऐसे खा रहे हैं और उनके दांतों में कई लोग अटके पड़े हैं, आधे कटे पड़े हैं, खून बह रहा है. ओहो भयंकर. जब वो दृश्य देखा वो प्रलय का दृश्य था, कि सारी चीजें परमात्मा में कैसे विलीन हो जाती है, वो दृश्य देख रहा था. और जब देखा उसने दृश्य तो ये भी देखा कि मैं भी उसमें जा रहा हूं. अब मेरा भी नंबर है, भगवान मेरे को भी खाने वाले. घबरा गया, पूछा तुम कौन हो, ये भूल गया कि मैं अर्जुन ये भगवान कृष्ण और यही मेरे को दिखा रही है, सब कुछ भूल गया. एक बार की बात है, मैं पूज्य रामकिंकर जी महाराज जी के पास जब हम लोग आश्रम में आते थे तो हम लोग जाते थे, सभी लोग जाते थे. हम लोग बड़े महापुरुष थे वो, तो हमने कुछ हनुमान जी की साधना के बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब लंबा अनुष्ठान का समय लिया जाता है तो बहुत सारे वहां भयंकर दृश्य दिखाई देते हैं, उस समय साधक को सावधान होने की जरूरत है. तो हमने पूछा कि क्या दिखता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगेगा कि कोई राक्षसी खाने के लिए आ रही है, कोई सांप आ रहा है काटने के लिए, ऐसा लगेगा कि गोद में ही सांप आके बैठ गया है, जप कर रहे हैं आप. तो उस समय मैंने बोला कि उस समय हम ये सोचेंगे कि ये तो ऐसे ही मनोभ्रम है. उन्होंने कहा यही तो याद नहीं रहता है उस समय. बोले आप जप कर रहे हैं और आप दरवाजा बंद है, कुंडी बंद है, सुरक्षित जगह पर बैठे हैं और अचानक आपको ऐसा लगा कि मेरे गोद में आके सांप बैठ गया, क्या करोगे? आप उठ करके माला फेंक दोगे, उस सांप को भगाओगे, क्या करोगे आप? या ये सोचोगे कि ये तो मन का भ्रम है? अपने को अभी तो ऐसे लगेगा कि हम सोचेंगे कि ये मन का भ्रम है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली. उन्होंने कहा यही याद नहीं रहता उस समय. उस समय ऐसा लगता है कि सचमुच सांप आ गया, मेरे को काटने वाला है. आप माला फेंक दोगे, भागना शुरू कर दोगे, तब तक आपकी साधना छूट गई, प्रतिबंध आ गया. तो वहां अर्जुन यही भूल गया, युद्ध के मैदान में हम हैं और भगवान श्री कृष्ण ही मेरे को ये विश्वरूप दिखा रहे, ये भूल गया, सब कुछ भूल गया. और उन्होंने भगवान को पूछा कस्त्वम, आप कौन है? तो भगवान ने बोला कालोस्मि. अब भगवान भी बड़े मजेदार, उनको ये बोलना था कि मैं कृष्ण हूं, ये नहीं बोला. क्योंकि वहां तो काल का रूप है, इसलिए भगवान ने कहा कालोस्मि. और इतना बोल के भगवान चुप नहीं रहे, भगवान ने कहा मैं काल हूं और सबको खा जाऊंगा. अब अर्जुन को भी लगा कि अब मेरे को भी खा जाएंगे, लेकिन धीरे से ये भी बोला तुमको छोड़ के. बोले सबको खा जाऊंगा लेकिन तुमको छोड़ के. तब थोड़ी राहत मिली अर्जुन को, थोड़ी राहत मिली. और उस राहत में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। अच्छा 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 बोले, ओहो तुम कृष्ण ही हो, बस इतना विराट रूप धारण किया, छोटे हो जाओ, जो चतुर्भुज था ना वही रूप दिखाओ, बोले वही रूप, क्षमा करो ये मैं देख नहीं पा रहा हूं। आश्चर्य की बात, भगवान ने शाश्वत सत्य का उपदेश किया सातवें अध्याय से लेके कि मैं कणकण में हूं, ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन था, ये ब्रह्म का निरूपण था, विश्व रूप का अर्थ यही है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये जो आप श्रवण करते हैं ना कि सब कुछ ब्रह्म है, यही तो विश्वरूप है और क्या है, आत्मे वेदम सर्वम, यही विश्वरूप है। और जब अर्जुन ने देखा तो उस दृश्य को देख नहीं पाया, वो दृश्य नहीं था, परमात्मा का यथार्थ रूप के दर्शन थे, लेकिन समझ नहीं पाया अर्जुन, समझ में नहीं कारण क्या था। यही तो श्रुति कह रही है, आपको गुरु ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी शक्ति देके आगे बढ़ा सकता है, आपकी अंगुली पकड़ करके खड़ा कर सकता है, थोड़ा चला सकता है, लेकिन दौड़ना तो आपको ही पड़ेगा। गुरु आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे और उपदेश करने के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन ये कौन करेगा, गुरु उपदेश करेंगे, आपको तत्व का बोध कराएंगे, लेकिन सुनना और सुनने के बाद मनन करना, मनन के बाद निधिध्यासन करना और उस आत्मसत्ता को समझना अच्छी प्रकार से अनुभव में लिया, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर कहते हैं कि अरणी मंथन अरण्योर निहितो जात वेदा, जो दो लकड़ियों के बीच में घर्षण करके अग्नि पैदा की जाती है वहां पर रगड़ना पड़ता है, बिना पुरुषार्थ किए, बिना श्रम किए गुरु के उपदेशों को भी हम समझ नहीं पाते हैं। और वो चीज जब आपको गुरु बता देते हैं तो अपने भीतर से ही उसको समझने का सामर्थ्य विकसित करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि गुरु आपको समझ देते हैं और समझने का सामर्थ्य भी देते हैं, ऐसा नहीं है, आपको गुरु केवल समझ देते हैं लेकिन समझने का सामर्थ्य आपको अंदर से निर्मित करना पड़ेगा, ये श्रम साध्य है, ये पुरुषार्थ है। कोई बात हमें समझ में नहीं आई, समझने का प्रयत्न तो आपको ही करना पड़ेगा ना, गुरु तो आपको समझाते रहेंगे बस। और जब अग्नि पैदा हो जाती है तो उस अग्नि का स्वभाव है सबसे पहले उस अरणी को खाना शुरू कर देती है, वो बात अलग है, वहां अरणी से अग्नि को हटा देते हैं, लेकिन जंगल में जब अग्नि पैदा हो जाती है रगड़ के, सबसे पहले वो अग्नि किसको खाती है, पैदा करने वाले को ही खा जाती है, अग्नि सबसे पहले उसी को खाती है जिसने पैदा किया, और ये ज्ञान रूप जो अग्नि है ना वो भी सबसे पहले उसी को खाती है जिसमें पैदा हुआ। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, जब ज्ञान रूपी अग्नि पैदा हो जाती है सबसे पहले उसी को खाती है, जीव भाव खा जाती है, हमारा अहंकार खा जाती है, हमारे अंदर जो कमियां है ना वो सब खा जाती है, जलन घृणा ईर्ष्या उसका मूल जो अज्ञान है सबको खा जाती है। एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, पढ़ने जैसा ग्रंथ है, मराठी में है वो, चांगदेव पासष्टी 65 उसमें ओवियां हैं, उसकी पहली ओवी का भाव बड़ा सुंदर है, उसमें ये है कि आत्मसत्ता प्रकट नहीं रहती है, अब प्रकट है, और जब वो प्रकट हो जाती है ना वो संपूर्ण जगत को खा जाता है, जो छिप करके दुनिया को दिखा देता है आज वो प्रकट हो जाता है तो वो दुनिया को खा जाता है। हमारा जो अहंकार है अज्ञान है तभी तक है जब तक हमारे अंदर आत्मसत्ता प्रकट ना हो, और जैसे आत्मसत्ता प्रकट हो जाती है अहंकार अज्ञान जलन घृणा ईर्ष्या सारी चीजें आत्मज्ञान की अग्नि में स्वाहा हो जाती। एक और एक दृष्टांत दिया, सुभृतो गर्भिणी भी। जैसे एक गर्भिणी महिला अपने पेट में बच्चे की सुरक्षा करती है, तो उदाहरण दिया है, वैसे ही अग्नि की सुरक्षा। आपने कभी देखा होगा जब अग्नि पैदा करते, तो कभी देखा होगा आपने, आजकल तो अग्नि अरणि मंथन करके पैदा करते ही नहीं है, थोड़ा माचिस जला देते हैं। पहले सचमुच अरणि मंथन करके अग्नि पैदा करते थे, और वो छोटी सी चिंगारी होती है, वो जब वो रगड़ते हैं ना, बहुत छोटी सी चिंगारी, वो आपके आंखों में भी नहीं दिखाई देती है। और वहां पर रुई रख लेते हैं, और ये सामान्य कपास की रुई नहीं होती है, वो रुई भी कोई दूसरी रुई होती है, वो बहुत महीम, जो अग्नि को बहुत जल्दी पकड़ ले, उसके रेशे बहुत छोटे होते हैं, बहुत मुलायम, वहां रखते हैं, छोटी सी चिंगारी पड़ी और उसको पकड़ लेते हैं। देखो यही तो है, अभी आप सत्संग कर रहे हैं, अनेकों साधु महात्माओं के आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, और आप जब सत्संग श्रवण करते हैं तो आप ये मत सोचना कि सत्संग में पूरे घंटा भर अग्नि अग्नि प्रकट, ऐसा नहीं है। कभी कभी कोई कोई बात किसी किसी आदमी को छू जाती है, आप सत्संग में बैठे हैं, कोई कोई बात ऐसी छू जाती है, और जरूरी नहीं कि जिस बात ने आपको छुआ वो सबको छुएगा। ये तो एक अरणि मंथन की तरह है, और इसमें चिंगारियां निकलेंगी बहुत छोटी छोटी, और उसको पकड़ना है। और पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है, आप दूसरी चिंगारी आएगी भी कि नहीं इसकी भी कोई संभावना नहीं है, आपको उसी चिंगारी को पकड़ना है। बहुत सावधानी से, आपको भी देखे होंगे, हमको याद आता है जब हम लोग ऋषिकेश में थे तो एक बार अग्नि जला रहे थे, कई लोग थे, हम अब नाम नहीं बताएंगे क्योंकि जिनको जिनका नाम बताएंगे वो सब यहां आते हैं। हम गुफा में रहते थे, हम पढ़ाते थे, पढ़ाते समय कई साधु आते थे, लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण वगैरह पढ़ाते थे, कभी कभी बहुत तकलीफ होती थी लकड़ियों की, तो अग्नि खूब जलाए, एक बार जलाया तो बड़ा अग्नि, माचिस पूरी खत्म हो गई, अग्नि नहीं जले, पूरी माचिस ही खत्म हो गई। और अंत में हम लोगों ने निर्णय किया कि उठाई लकड़ियां और गंगा जी में फेंक दी, बोले जलाने ही नहीं है, चलो आज भूखे रहते हैं। आप उस समय आपको अग्नि जलाने में कितना श्रम है, बहुत श्रम है, बहुत श्रम है, अग्नि जलाना बहुत श्रम का काम है, उसमें भी लकड़ियां गीली हैं, बड़ी हैं, छोटी छोटी हो, सूखी हो, तो अग्नि जल्दी पकड़ में आती, बहुत श्रम है। अपने जीवन में प्रेरणास्पद विचारों का संकलन करना भी बहुत कठिन है, कई बार तो अपने को मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमारे जीवन के लिए कौन से विचार उत्तम है, समझ में नहीं आता। इसलिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, जिस प्रकार एक गर्भिणी अपने बच्चे की उदर में रक्षा करती है, बहुत सावधानी से रक्षा करती है, ऐसे हमें अपने अच्छे विचारों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। जो आपको साधु महात्माओं के द्वारा, गुरु के द्वारा साधना मिलती है, उसको बहुत सुरक्षित रखने की जरूरत है, कहीं खो न जाए। अच्छे विचार मिलते हैं बहुत जल्दी खो जाते हैं, और वो हमेशा हमारे सामने हो विचार। एक दिन मैं आपको कह रहा था, ज्ञान की कमी नहीं है, यहां इतने सारे पेन ड्राइव है, ये सब बहुत बड़े बड़े पेन ड्राइव है, ये जितना भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब आपके अंदर मेमोरी में स्टोर हो रहा है, लेकिन कई बार आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में वो चीजें होती हैं, लेकिन ढूंढने पर भी नहीं मिलती हैं। आप कई बार बोलते हैं, अभी गिरीश भाई का नंबर था हमारे मोबाइल में, ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, नंबर तो है उसके अंदर, लेकिन बाद में इनसे मंगाया फिर डाला, अरे ये तो नंबर है लेकिन मिल ही नहीं रहा था। कई बार ऐसा होता है, जब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो बहुत सारी चीजें खोती हुई मालूम पड़ती हैं, लेकिन आपको खोते हुए नहीं होना चाहिए, ये बात कहना चाहती श्रुति। हमारे अंदर जो ज्ञान है ना, वो खोता हुआ ना हो, आपके अंदर ज्ञान है और वो समय पर आपको याद आना चाहिए, जो अच्छी चीजें होती है ना, समय पर याद आना चाहिए। अच्छा मान लो कि कोई शस्त्रधारी सेना का जवान है और जिस समय उसको जरूरत पड़ी और उसको बंदूक ही न मिले, गए ना काम से, उसको जरूरत है अभी बंदूक की जरूरत है, दिन भर तो साथ में थी और जब वो सामने आया शत्रु और उस समय बंदूक ही नहीं मिली उसको, तो गया काम से। ऐसा हमारा ऐसा ही तो होता है, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हम दिन भर सुबह से शाम तक सत्संग करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें श्रवण करते हैं, लेकिन जब समय बिल्कुल समय आता है कि उस समय ज्ञान की हमें बहुत जरूरत है, उस समय बंदूक नहीं मिलती है, उस समय शास्त्र की अच्छी अच्छी चीजें हमारे दिमाग में आती ही नहीं है। और हम कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश भी करते हैं। इसलिए बहुत बुद्धिमत्ता पूर्ण जो हम समझते हैं, जो चीजें हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं, वो चीजें बहुत सुरक्षित रखने की जरूरत है। गर्भिणी भी सुभृता इव दिवे दिवम इद्यो, दिन दिन प्रतिदिन इद्य, इद्य का मतलब होता है स्तुति योग्य, जानने योग्य, समझने योग्य, जो आत्मतत्व है। जागृत फिर हविषद फिर मनुष्य फिर अग्नि एतत् वैतत्। उस आत्मतत्व को जानने के लिए तीन चीजें यहां बताई श्रुति ने। जागृत फिर हमें होशपूर्ण होना चाहिए। श्रुति कति उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो और जागो। ये दो शब्दों का प्रयोग किया, उठो और जागो। तो उठना और जागना कोई अलग अलग है क्या? उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। श्रुति कति उठो और उठ के मतलब उठ गए तो जग गए, जग गए तो उठ गए। लेकिन श्रुति ने जो कहा ना उठो और जागो, कई बार आदमी उठता है लेकिन उठने के बाद भी वो उठता नहीं है। ये बात है इसमें, आदमी उठा तो है लेकिन उठा है कि नहीं। कई बार हम उठे हुए होते हैं लेकिन उठे हुए होने के बाद भी जगे हुए नहीं है। केवल उठने का अर्थ जगना नहीं है, ये जगने का अर्थ अलर्ट, माने आपके अपने लक्ष्य के प्रति आप सजग हो गए। आप उठ तो गए, आप उठ के क्या कर रहे हैं? अपने जो जीवन का उद्देश्य, जो भी आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं? आप उठे तो हैं लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति यदि सजग नहीं है तो आप उठे ही नहीं है। श्रुति को यह कहना है। अब आजकल हम लोग उठते हैं क्या करते हैं? हमने महात्माओं को भी देखा है, हमको भी देखा है, उठते ही मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। और आजकल ये बड़ी भारी बीमारी है। गिरीश भाई आप तो सतयुग हैं, अब ये युग जो है बहुत मजेदार युग है। अब दिन भर आदमी देखता है कि हम जो कमेंट किए उसके लाइक कितने मिले, हमको लाइक कितने लोगों ने किया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, दिन भर देखता रहता है। दो चार लाइक मिलेगा, हा 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 बड़ा मजा आ गया भैया। आप सुबह उठ के क्या कर रहे हैं? सुबह उठ करके ध्यान करो, जप करो, पढ़ो, लिखो, उठे तो हैं, जरूर जगे, चार बजे जगे, सुबह चार बजे जगे, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं है। इसलिए श्रुति को कहना पड़ा उत्तिष्ठत जागृत। वो कोई जरूरत है क्या सुबह चार बजे उठ करके आपको कोई चीज देखने को जरूरत है क्या? ईमानदारी की बात है, सुबह पांच बजे उठे हैं, उठते ही आपको कोई जरूरत है क्या कि भाई कितने फेसबुक में कमेंट मिले, कितनी लाइक मिली, क्या किया फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर देखना कि कितने लोगों ने, कोई जरूरत नहीं क्या? अरे एक घंटे के बाद कर लेंगे, हम बाद में कर लेंगे। आपका जो लक्ष्य है तय, उस लक्ष्य के तरफ अग्रसर सावधानी पूर्वक अग्रसर होने का इनाम यहां जागृति है। उत्तिष्ठत जागृत और उसके बाद फिर प्राप्य वरान निबोधत श्रेष्ठ तत्व आत्म तत्व जो आपके जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करो। इसलिए यहां होश की बात है, होश की बात है। इसलिए जागृत थी ही बहुत होशपूर्ण अपने लक्ष्य के प्रति बहुत होशपूर्ण हो। और दूसरी बात हविष्यथिर जीवन हमारा श्रमशील हो, होशपूर्ण होते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रमशील हो। अब आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं तो आप ध्यान से ये श्रम है, ये श्रम है, आप सत्संग श्रवण का ये भी एक श्रम है होशपूर्ण, और ये श्रम है आप जप कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आप योग कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं ना ये आत्मा परमात्मा को जानने के लिए ही नहीं आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भी है। अभी कल 23 तारीख है ना, 23 तारीख कल से हम लोग शाम को 4 से 6 शायद टाइम है पातंजलि योग दर्शन के ऊपर प्रवचन सुनेंगे शाम को 4 से 6। बहुत सुंदर ग्रंथ है पातंजलि योग दर्शन 4 से 6 29 तारीख तक चलेगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम चीज है प्राणायाम आसन ध्यान, ये आत्मा परमात्मा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो बात की चीज है, लेकिन उसका सद्य दृष्ट फल है, दृष्ट फल है ये सत्संग का दृष्ट फल है। आपका स्वास्थ्य मन स्वस्थ रहता है, ईमानदारी से कोई सत्संग करे, ईमानदारी से कोई ध्यान करे, ईमानदारी से प्राणायाम करे योग करे, आदमी तन और मन से स्वस्थ हो जाता है। ईमानदारी से सजगता पूर्वक श्रम, ये श्रुति ने कहा हविष्यत् फिर, और मनुष्य भी बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया, आप कर तो रहे हैं होश भी हैं और श्रमशील भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धिमत्ता का होना भी बहुत जरूरी है। या मनुष्य भीर का अर्थ है मनुष्य शब्द से, मनुष्य शब्द बनता है मनु अवबोधने बोध, आप कोई भी काम करें जान के करें, हम अंधेरे में ना हो। आप जब भी कोई काम करें ना तो जान करके काम करेंगे तो आपको जल्दी उसका फल मिलेगा। पहले समझ लो उसको, टेक्निक क्या है उसकी तकनीकी, और जानने के बाद आप उसको करो तो आपको तुरंत मिले। जब करना चाहिए कैसे करना चाहिए पहले जानो, ध्यान करना चाहिए कैसे करना चाहिए जानो, प्राणायाम करना चाहिए कैसे करना चाहिए, आपको योग करना चाहिए कैसे करना चाहिए, और आप जब जान लेते हैं ना तो वो चीजें सरल हो जाती, उसमें संकल्प आ जाता है, केवल अपना संकल्प नहीं वो परंपरा का संकल्प भी आ जाता है उसमें, केवल पुस्तकीय भाषा से काम नहीं चलता है। अपने पुस्तक में पढ़ा योग कैसे करना चाहिए, एक छोटी सी बात मैं आपको सुना देता हूं, जब एक योग में एक मुद्रा है खिचड़ी मुद्रा, और कई ग्रंथों में मैंने पढ़ा जैसे ज्ञानेश्वरी में भी है ये बात कि योगी खिचड़ी मुद्रा लगाता है अमृत ऊपर से सहस्रार से टपकता जठराग्नि में गिर के नष्ट हो जाता है, और योगी अपनी जीभ उल्टा करके अंदर ले लेता है सहस्रार तक, और वो अमृत जो टपकता है उसके जीभ पर उसका ठंडा ठंडा शीतल अमृत का पान करता है। लेकिन वर्णन तो ऐसा काव्यात्मक है वो, और हमको भी ऐसा लगता था कि सचमुच कोई ऊपर से तालाब है ऊपर से टपकता है अमृत और जठराग्नि में जाके नष्ट हो जाता है। सचमुच जब हम लोग खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करने लगे, मेरी तो नहीं लगी क्योंकि उसके लिए जीव लंबी चाहिए, अब आदमी खींच करके कितना जीव लंबी करेगा, और हमको बहुत बड़े योगी थे 115 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा उन्होंने, उन्होंने कहा कि छोड़ो ये तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी खिचड़ी मुद्रा लगी आश्चर्य की बात बता दो, जैसे उन्होंने खिचड़ी मुद्रा लगाई और खिचड़ी मुद्रा लगती ही गर्मी के दिनों जेठ के महीने में बैठे थे अपने कमरे में और वो अनुभव कर रहे थे कि जैसे पूरा शरीर मेरा ठंडा हो गया, पूरा शरीर ठंडा हो गया, मन एकाग्र होने लगा। अब वो ठंडा हो गया, समझ गए कि नहीं? वही है, वही है, शीतल चंद्रामृत जो है ऊपर से टपकता है, वो कुछ नहीं, वो श्वास है ना, जीभ से टकराती है, पता नहीं कोई कुछ अंदर से प्रक्रिया होती है और पूरा शरीर जो है आपको ऐसा लगता है कि मानो हम बर्फ में बैठे हैं। आप कई बार पुस्तक में कुछ और पढ़ते हैं और जब उसका अनुभव करते हैं ना तो बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए यहां कहते हैं कि आपको जो भी कुछ करना है, श्रवण मनन निधिध्यासन योग साधना जब सही अर्थों में उसका संशोधन करें और उस चीज को अच्छी प्रकार से जान करके उस साधना पथ पर चले, एतद्वै तत्, इस प्रकार करने के बाद जिस तत्व को आप जान लेते हो वही आत्म तत्व है, वही सत्य है। ओम शांति शांति।